الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، جو شیخین روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم جزء من سبعین جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیتا، قال فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا انہوں نے، جو جہن نارکم جزء من سبعین جزء من ناری جہنم، جو یہ دنیا کی آگ ہے، جو فائر دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ اس فائر کے مقابلے میں، یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ اس کا صرف 1/70 آگ کا گرمی یا حرارت یا ٹیمپریچر کے اعتبار سے اس کا، جہنم کی آگ کا 1/70 حصہ ہے صرف دنیا کی آگ۔ تو اس پر کسی نے قیلا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ ان کانت لکافیتن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کسی صحابی نے کہ کیا یہی جو دنیا میں آگ ہم دیکھتے ہیں کیا یہی کافی نہیں تھی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرها، کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز بڑھا دی گئی ہے، اس کو، اسے اور زیادہ تیز یا گرم یا اور زیادہ ہیٹ اس کے اندر پیدا کر دی گئی ہے جہنم کی آگ میں 69 ٹائمز۔ تو ظاہر ہے یہاں جہنم کی آگ کا ذکر ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے پہلی بات تو ظاہر ہے یہ ہے، جس طرح سے جنت میں بہت سارے انعامات اور نیکیوں کی ہمیں قرآن و حدیث میں جو وہاں پہ بینیفٹس اینڈ باؤنٹیز ملنی ہیں اس کی بشارتیں ملتی ہیں، اسی طرح دوزخ کے عذاب سے اللہ سے ڈرنے کے اور شریعت پر قائم ہونے کے لیے بھی یہ جو ہمیں حدیث اور قرآن میں آیات ملتی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا اور اللہ کے لیے اس کی اتباع کرنا، اس کی شریعت پر چلنا ظاہر ہے مقصود اصل ہوتا ہے، اور اس میں تعلق اصل میں صرف امیجنیشن کا نہیں ہوتا، بیکاز انسانی جو مائنڈ ہے، جو ہیومن امیجنیشن ہے، وہ تو بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے، جتنا آنکھ کے آگے ویژن نظر آ رہا ہوتا ہے بس وہاں تک آنکھ دیکھتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے آگے کوئی دنیا یا یونیورس ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ بالکل ایبسلوٹلی کرتا ہے، لیکن نیکڈ آئے کے اندر تو ایک صرف سرٹن کیپیسٹی ہوتی ہے، یا کانوں میں سننے کی یا سمجھنے کی، ہمارے دماغ میں بھی اسی طرح۔ تو آبویسلی جو چیز یہاں پہ ہم ازوم کرتے ہیں، کوئی بہت اچھا کوئی میٹھا پھل، کوئی فروٹ ہے، کوئی ایپل ہے یا کوئی گریپ ہے، تو ہم اس کے امیجن بھی صرف اسی کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، جبکہ جو جہنم کے فروٹس اینڈ پھل ہوں گے وہ تو اس سے بہت زیادہ ملٹی فولڈ زیادہ سویٹ اور جوسی ہوں گے۔ اسی طرح سے اب دوزخ کے عذاب کے متعلق بھی ہم نے مثال کے طور پہ، اگر جب ہم کوئی سانپ کا یا بچھو کا، کوئی اس طرح سے کسی زہریلے اور ڈینجرس کسی جانور کا ہم نے پڑھا عذاب سے متعلق، تو اس میں ہمارا امیجنیشن تو ظاہر ہے صرف اسی لیول تک جاتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو صرف اسے دنیاوی کسی سانپ بچھو سے ہی کمپیئر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آبویسلی جہنم کا وہ کس کیپیسٹی میں اور کتنا دردناک عذاب آنے والا ہو سکتا ہے کسی پر، یہ دراصل تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی علم ہے اور فرشتوں کے پرابلی، بٹ انسان اس کی صحیح معنوں میں فل فلیج جس کو کہتے ہیں، اس لیول پہ سوچ ہی نہیں سکتا، کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی اس کی جو تھاٹ ہے۔ اینی ہاؤ، تو जिस तरह से दुनिया की आग में भी हम देखते हैं आजकल तो बहुत सारे टेम्परेचर्स में डिफरेंस नज़र आता है, कोई सिर्फ जो ग्रास वगैरह को, जो ड्राई ग्रास वगैरह को जलाने जला रही हो आग, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, जबकि उसके मुकाबले में अगर वुड जल रहा हो, कोई लकड़ी हो, उसको आग लगाई जाए तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर कोल का टेम्परेचर और हाई हो जाता है, ख़ास तौर से इवन जो स्टोन से कोल एक बनता है, अगर उसे आग लग जाए तो उसका टेम्परेचर और हाई होता है। यहाँ तक कि जो गोल्ड होता है, जिस भट्टी में गोल्ड को पिघलाया जाता है, वो इतनी हाई लेवल, इतनी हाई टेम्परेचर पे रिफाइन होता है वो गोल्ड, कि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। फिर न्यूक्लियर जो एनर्जी से जो हीट पैदा होती है, वो तो कितनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा पावरफुल होती है नॉर्मल एक किसी आग के। तो इस तरह से इसे कोई अज़ूम करना कि वो और ज़्यादा कितनी ख़तरनाक होगी, ये कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह में इससे बचाए, और असल मकसद इनका बातों का यही होता है कि जो बंदा है वो इससे इबरत हासिल करे और सही मायनों में शरीयत की पैरवी करने की उसे तौफीक हासिल हो। इसी आग से रिलेटेड फिर अगर हम दूसरी एक हदीस देखते हैं बुखारी और मुस्लिम दोनों में ही, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो उसमें आता है इन्ना हवना अहले नार अज़ाब मिन लहू नालान व शराकान मिन नार यगली मिन हुमा दिमागुहु कमा यगलिल मिर्जल, के एक बंदा होगा जहन्नुम में, ये जहन्नुम का एक बंदे का जिक्र आता है उसी आग से मुतालिक, कि उसकी जो शूज़ उसने पहने हुए होंगे, उन शूज़ पे लेसेस होंगे, तस्मे लगे हुए होंगे, और जो वो लेसेस होंगे उन लेसेस को सिर्फ आग लगी हुई होगी, यानी बाकी कुछ उसका अज़ाब नहीं आ रहा होगा इस बंदे पे। ये बिल्कुल एक सबसे निचले दर्जे के बंदे का, जो जहन्नुमी का सबसे लोएस्ट या हल्का दर्जा होगा, उस स्टैंडर्ड का जो बंदा, जिस जो अज़ाब जिसको मिल रहा होगा, सो उसकी सिर्फ लेसेस को आग लगी हुई होगी, बट उसकी हीट इतनी ज़्यादा होगी कि जो उसका माइंड होगा, जो उसका ब्रेन होगा, यानी उसका दिमाग, वो खौलने लगेगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा उस हीट से जो उसके लेसेस में शू की लगी हुई होगी। जैसे फिर एग्जांपल इसी हदीस में आगे फरमाई, नारिन यगली मिनहुमा दिमागु कमा यगली यगलिल मिर्जलु, कि जैसे कोई पतीली है, कोई हांडी है, कोई डिश है, उसे हम अवन के ऊपर जब बॉयल करने के लिए रखते हैं और उस पर पानी बॉयल होना शुरू होता है और वो एकदम प्रेशर जब क्रिएट होता है, तो वो किस तरह से यानी उसकी एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बबल्स के थ्रू बड़े बड़े, तो उस तरह से इसकी एग्जाम्पल दी कि उस तरह से इसका माइंड खोलना शुरू हो जाएगा। मा यरा ना हदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन इन्नहु लअहवनुहुम अज़ाबन, ये बंदा ये सोचेगा यार इससे ख़तरनाक अज़ाब तो किसी को मिल ही नहीं रहा होगा, इसकी ऐसी हालत होगी, हालांकि ये सबसे ही निचले, अहवनुहुम अज़ाबन, ये सबसे हल्का, कम यानी कि बिल्कुल मिनिमम लेवल का जो अज़ाब होगा ये इसे मिल रहा होगा, सिर्फ इसके लेसेस जल रहे होंगे शू के वो भी, और इसकी हालत ये होगी, ये सोच रहा होगा कि मुझे तो सबसे ख़तरनाक अज़ाब हो रहा है, या इससे ख़तरनाक अज़ाब, इससे डेंजरस तो अज़ाब किसी को हो ही नहीं रहा होगा। तो जाहिर है ये सबसे हल्के दर्जे का होगा, तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक अज़ाब और कितना डेंजरस होगा और कितना तकलीफ़ दे और पेनफुल होगा इससे, तो अल्लाह हमें महफूज रखे। इसकी मिसाल एक दूसरी हदीस में हमें मुस्लिम शरीफ में मिलती है, जो कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उसमें फरमाते हैं यूँ ताबे आना में अहले दुनिया में नाहले नार, के जो एक बंदा होगा जो दुनिया में, जिसे बहुत अल्लाह ने अहले अनामी अहले दुनिया, जिसे दुनिया में बहुत नेमतें अल्लाह ने दी होंगी, बहुत बेनिफिट्स और बाउंड्री, दुनिया में बहुत ऐयाशी से रह रहा होगा, उसे जहन्नुम की एक आग के अंदर क़यामत के दिन सिर्फ़ एक गोता दिया जाएगा, एक डुबकी लगाई जाएगी, सिर्फ़ एक डिप जिसको कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कभी किसी डाइंग फैक्ट्री में अगर जब जाते हैं, जहाँ पे कपड़ा खाली कलर हो रहा होता है, या साइजिंग की फैक्ट्री में जहाँ सिर्फ थ्रेड के ऊपर वो एक हल्का सा लिक्विड से उसको केमिकल से लगाया जाता है, तो एक डाइंग फैक्ट्री में हम देखते हैं कि कपड़े को सिर्फ एक डिप भी अगर करके निकाला जाए तो उसमें वो रंग पैदा हो जाता है। तो इस बंदे को वो हल्का सा एक बिल्कुल यानी कि प्रॉपरली कलर भी नहीं हुआ हुआ हो कपड़े को, अभी सिर्फ एक गोता लगे अंदर, वो कपड़ा पानी के उस डाइंग के अंदर जाए और निकल के बाहर उसे वापस निकाल लिया जाए, तो ऐसा किया जाएगा इस बंदे के साथ जो कि दुनिया में बहुत ही बेनिफिट्स और नेमतों में रहता था। इसे एक जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी, फिर इससे कहा जाएगा यबना आदम, ए आदम के बच्चे, हल राई तखैरन कत्तू, के तुमने आज तक कोई खैर देखी है कभी, हल मर्रा बिका नईम उन कत्तू, फ़यकूलु ला व रब्बी ला वल्लाह या रब्बी, के नहीं है मेरे रब, मैंने तो कभी कोई नेमत देखी ही नहीं। यानी वो दुनिया में इतनी अयाशी से और ऐशो इशरत से और इतने कंफर्टेबल तरीके से रह रहा होगा, पूरी ज़िंदगी रहेगा अयाशी से, लेकिन जहन्नुम के एक गोता लगने के बाद वो सब भूल चुका होगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा, वो बोलेगा मैंने तो आज तक कोई खैर ही नहीं देखी। देन एक यूता भी अशद, एक दूसरे बंदे को लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर बहुत ही फ़कर व फाके में और परेशानी में तकलीफ़ों में, उसे बहुत अल्लाह ने दुनिया में दी और या ना उसने अल्लाह के रास्ते में निकल कर क़ुरबान होकर, ज़ाहिर है जैसे वनकसुम मिन समरात वल, ये जो माल जान माल वक्त अपना लगाया अल्लाह के रास्ते में, और ज़ाहिर है इस अगर जो इस काम पे लगा रहेगा तो दुनिया में तो ऐशो इशरत और अयाशी और कंफर्ट ज़्यादा नहीं देख पाएगा, तो ऐसा बंदा एक आएगा जो पूरी ज़िंदगी जिसने अल्लाह के लिए रास्ते में लगा दी हो और दुनिया में कोई आराम कोई सुकून कोई अयाशी कोई कम्फर्ट देखी ही नहीं, वो बंदा जब आएगा और उसे एक जन्नत के अंदर एक उसी तरह से बिल्कुल सिर्फ गौतार एक डिप मारा जाएगा उस बंदे का, और फिर कहा जाएगा यबना आदम हल रही तबूसन कत्तू, तुमने कोई कभी कोई तकलीफ़ देखी है क्या, मतलब तो वल मर्रा का भी अशद उन कत्तू, फ़ैक़ालू ला वल्लाही या रब्बी मा मर्रा भी सुन कत्तू वला रही तो शिद्दतन कत्तू, कि नहीं मैंने आज तक कभी कोई तकलीफ़ ही नहीं देखी। उस एक सिर्फ गोता लगाने से उस जन्नत की जो नेमतों का, वो बंदा अपनी ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें भूल जाएगा। तो ज़ाहिर है इससे पता चलता है कि जो आखरत की जो इटर्नल बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स हैं वो तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कोई ना कोई एफर्ट अपनी लाइफ में डालनी चाहिए, और बहरहाल जो फिर इस जहन्नुम का भी अजाब का जो क्योंकि ज़िक्र हो रहा है तो वो भी डिफरेंट लेवल्स का होगा, फिर ये तो सबसे हल्के दर्जे के जो अजाब वाली बात हो रही है, सिर्फ एक डिप लगी होगी किसी को या एक जो मिनिमम लेवल का अजाब क्या हो रहा होगा कि उसके शू लेसेस में आग लगी होगी। लेकिन हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर जिससे में आता है कि मिनहुम ताखुज़ुन नारु इला काबई व मिनहुम ताखुज़ुहु नारु इला रुकबतई व منهم تأخذ النار الى حجرتيه ومنهم من تأخذ النار الى ترقوته, یعنی کہ ایک ایسا بندہ ہوگا جس کی صرف اینکلز تک اس کی رکبتی, یعنی کہ اس کے صرف پاؤں کے سب یہ سمجھے کہ ٹخنوں تک صرف آگ لگی ہوئی ہوگی, اینکل تک एंकल्स तक आ गई होगी, एक होगा उससे जो ज़्यादा अजाब वाला हो रहा होगा उसको उसके रान यानी कि रुकबतई यानी कि थाइज उसकी टांगों तक पूरी उसकी लेग्स बर्न हो रही होंगी, उससे भी जो ख़तरनाक अजाब हो रहा होगा वो उस बंदे के पूरी वेस्ट तक आग लगी हुई होगी, और जो उससे भी ख़तरनाक अजाब हो रहा होगा उससे भी डेंजरस वो उस बंदे की गर्दन तक आग ही आग से वो जल रहा होगा। और वो ज़ाहिर है वहाँ के तो फिर इसके अलावा सिर्फ आग ही नहीं, वहाँ पे और कितने ख़तरनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, इन्ना फिन्नारी हयात इनका मिसाल बुख्ती तलसा हो, कि वहाँ पे बुख्ती ऊंट बुख्ती एक ख़ास नस्ल की बात है जो उस ज़माने में एक ऊंटों के लिए फेमस थी। ऊंट इस एरिया के जो ज्योग्राफिकल या जो इस कबीले के लोगों के पास ऊंट होते थे वो जो हैं वो नॉर्मल ऊंटों से ज़रा कद कामत यानी कि साइज़ में बड़े होते थे एंड पावरफुल ताकतवर होते थे। तो वहाँ का एक सांप जो होगा हयात इनका अमसाल बुख्ती कि उस बुख्ती ऊंट का उस कैमल की जो कि नॉर्मल कैमल से भी बड़ा और डेंजरस और पावरफुल होता है उसके बराबर एक एक सांप होगा वहाँ पर। और एक दफ़ा अल्लाह तफ़ैयुजिदु हमौतहा अरबईन खरीफ़न, जो इस बंदे को एक दफ़ा उस सांप ने डस लिया तो वो 40 ईयर्स तक उसकी पेन महसूस उसके असर में रहेगा। ظاہر ہے اللہ معاف کرے، یہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو اس سے ایک تو محفوظ رکھے، اور کہ اللہ خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ایسا عذاب میں مبتلا ہونے سے بچائے. اور یہی نہیں بلکہ فنار اقارب، ان کی وہ جو وہاں کے بچھو ہوں گے، اسکارپینز ہوں گے، کامسال البغال الموقفتی تلسا احداہن لسات فیوجد حموتا اربعین خریفن، یہ اسکارپینز بھی یہ بالکل میولز یعنی کہ جو خچر ہوتے ہیں ان کے برابر ہوں گے، ڈونکیز سے جو ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، خچر جسے کہا جاتا ہے یا میول کہا جاتا ہے، وہ بندے ہوئے ہوتے ہیں اس سائز کے ہوں گے. اور پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہ وہ 40 ایئرز تک بندہ اس کے ایک دفعہ کے ڈنگ مارنے کو یا ڈسنے کو یا بائٹ کرنے کو وہ اس کا اثر سے جان نہیں چھڑا پائے گا، اتنی تکلیف ہوگی، اللہ معاف کرے. اور ظاہر ہے یہ تو کہیں آگ اور کہیں پھر یہ سانپ بچھوؤں کی باتیں، اور پھر جیسے کہ آتا ہے یہ دوسری ایک حدیث کے اندر ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ لو ان دلوت من غساک یراک فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، کہ یہ ایک جو جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے یہ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ یہ ان کے اوپر آگ جب گرائی جائے گی، اور یہ قرآن پاک کے ڈرا دینے والے الفاظ کہ ان کے آگ برسے گی، تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، ان کو سڑی ہوئی پیپ پینے کو ملے گی، اور تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کھانے کے لیے صرف جو کانٹے یا تھرنز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ان کو کھانے کی چیزیں ہوں گی ان کے لیے، نہ انہیں لا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ انہیں کسی بینیفٹ دیں گی کھانے کی، ان کی بھوک کو ختم کریں گی، اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا ان کے کھانے پینے سے بھی، اتنی تکلیف دے کھانا پینا ہوگا. اور اسی وجہ سے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی یہی آیا کہ وہ جو ڈول ہے ہوگا اگر اس ایک جو سڑی ہوئی پیپ جو ان جہنمیوں کے بدن سے نکلے گی، یعنی ان کے فلو کر رہی ہوگی ان کے باڈیز سے، وہ پیپ اگر صرف اس کا ایک ڈول یعنی کہ ایک بول دنیا میں بہا دے تو پوری دنیا اس سے بدبودار یعنی کہ سمیل ہو جائے، سٹنک کرنے لگے، اتنی گندی وہ اتنی ڈسکسٹنگ پیپ ہوگی جو ان کے باڈی سے نکل رہی ہوگی. اور اسی لیے ایک ظاہر ہے دوسری روایت میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک کی آیت ہے اتق اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تلاوت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ظاہر ہے ڈرنے کے بعد ایسے حال میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. تو یعنی اس ڈرانے کی بات چل کرنے کے بعد، یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح کا فرمایا کہ لو ان قطرۃ من زقوم قطرت فی الدنیا لفسد علی اہل الارض معائشہم فکیف بما یکون طعامہ، کہ زقوم جو ایک درخت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ٹپک جائے تو پوری زمین میں جو بسنے والی پوری جو لائف ہے، جو پوری لیونگ بینگ ہے پوری، وہ سب کو خراب کر دے، اور سب کا سب جو ہے وہ سمیل اور سٹنکی ہو جائے، اور یہ وہ ہوگا جو انہیں کھانے کو ملے گا وہاں پہ. اور یہ زقوم ان جہنمیوں کو وہاں کھانا پڑے گا، جس کو ایک صرف بول اگر اس دنیا پہ گرا دیا جائے تو پوری دنیا سٹنکی اور خراب اور زائل ہو جائے، اتنی ڈینجرس چیز ہوگی یہ کوئی، واللہ عالم. اور یہی اب بات یہی ہے کہ اب یہ جب حدیث بندہ پڑھے یا قرآن کی آیتوں میں اس طرح کے ذکر آتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے، پھر بندہ کیا کرے، اپنے آپ کو کیا بچائے. ظاہر ہے ہم جیسے گناہگار اگر اب زیادہ محنت یا ایفرٹ یا ڈالنے کے اس میں بھی نہیں چلتے راستے پر، تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں کہ یا ایو الناس، ایک خطبہ فرما رہے تھے، اے لوگوں ابکو فإن لم تستطیعوا فتباکوا فإن اہل النار یبکون فی النار، کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے رویا کرو، और अगर रोना ना भी आ रहा हो तो रोने जैसी शक्ल बना लिया करो। क्या मतलब? कि इंसान आजजी अपने अंदर लाए और अल्लाह से डरे और रोने की कोशिश करे उसके डर और उसके खौफ से, क्योंकि अहले नार जो होंगे, जहन्नुमी जो होंगे, वो इतना रोएंगे कि उनके आंखों से आंसू बहना शुरू होंगे और आंसू फिर चलते चलते खून निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि उनकी आइज़ के अंदर ज़ख़म पड़ जाएंगे। कान्ना जिदा वलो हत्ता तन कहते या दुमो फतसील उद्दिमा, ये खून बहते बहते उनकी पूरी आंखें सूख जाएंगी और इतना पानी बहेगा, इतने आंसू उनके निकलेंगे फिर खून के भी, के फलो अन्ना सुफनन उस जियत फिया लजरर, उसके ऊपर अगर एक किश्ती यानी कि एक बोट रख दी जाए तो वो बहने लगेगी। तो बहरहाल जन्नत जहन्नुम के खौफ से बंदे को रोना चाहिए, ये इस हदीस का मकसद था असल। और इसी तरह से हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूल सल्लम से, अंजरतुकुमुन्नार, क्या मैंने तुम्हें जहन्नुम से डराया नहीं है, क्या मैंने तुम्हें जहन्नुम से डराया नहीं है, बार बार बोल रहे थे। फ़मा यकुल हत्ता लौ क़ामा फ़ी मकाम हाज़ा समिऊ आला सूक, वो इतना इसे एफिशिएंसी से, इतनी पैशन से बोल रहे थे बार बार कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर वो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, जब ये रिवायत कर रहे थे तो फरमा रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ अगर मैं यहाँ से बोल रहे होते वो, तो पूरा बाज़ार उनकी आवाज़ सुनता। और वह हत्ता सक़तत कमीसतुन कानत अलैहि इंदा रिजलैही, यानी कि ये एक ऐसा मौजू था जहन्नुम की आग से बचने का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ऐसा पैशन और एक कैफियत तारी हो जाती थी। सहाबी उससे भी नरेट कर रहे हैं ताकि उसकी मामले की अहमियत का और उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो कि उनकी जो कमीज, जो उनकी चादर होती थी, द शॉल, द वन ही वॉज सिर्फ जैसे जो रैप की हुई, जो ओढ़ी हुई होती है अपने ऊपर, वो पहनी हुई जो शॉल थी वो नीचे ज़मीन तक, उनके पाँव तक गिर चुकी होती थी और उन्हें एहसास तक नहीं हो रहा होता था, क्योंकि वो इतने पैशन में, इतने दर्द के साथ इस जहन्नुम की आग से डराने की बात कर रहे होते थे। और जाहिर है इससे बचने का तरीका तो वही है जो इंसान को की असल फ़िक्र है और जो हमें बार बार तरगीब मिलती है कि जन्नत के मामलात हम सुनते हैं, बहुत सारी नेमतों का सुनते हैं, दोज़ख को देख के मामलात, इतने अज़ाब के सारी हदीसें कुरान की आयतें हम पढ़ते हैं, तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे जन्नत को हासिल किया जाए? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लम ने फरमाया, हुफ्फत अन्नार बिश्शहवात व हुफ्फत अलजन्नत बिलमकारिम मकारिह, कि जन्नत को शहवात से ढक दिया गया और जहन्नुम और सॉरी नार को, इस आग को जो जहन्नुम की आग है, उसे शहवात से सराउंड कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया, और जो जन्नत है उसे यानी मुशक्क़तों से या सख्तियों से, मकारी ही यानी परेशानियों से घेर दिया गया है। क्या मतलब है इस बात का? इसकी तशरीह एक दूसरी रिवायत से होती है, जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, तिर्मिज़ी और अबू दाऊद और नसाई के अंदर। उसमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा देखो जन्नत को, और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वाह, उन्होंने अल्लाह की बहुत तारीफ़ बयान की और कहा कि ये तो इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगता है कोई भी इंसान इसे छोड़ेगा नहीं, सब इसके अंदर जाएंगे। तो अल्लाह ने फिर क्या किया कि उस जन्नत को तकलीफ़ों से और परेशानियों से और इन चीज़ों से घेर दिया, सराउंड कर दिया, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि अब बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा। तो उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा ख्याल है अब तो किसी का भी जन्नत में जाना ही मुश्किल होगा, इतनी तकलीफ़ें और इतनी परेशानियाँ इसको ले जा, इसके इस तक पहुँचने के लिए हासिल करनी पड़ेंगी, अगर तो कोई इसके लिए तैयार ही नहीं होगा यानी। और इसी तरह फिर जब जहन्नुम को, आग को तैयार किया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा देखो इसे, तो जब देखेंगे उसकी हौलनाक मंजर तो कहेंगे आई रब्बी व इज्जतिक ला यस्मऊ बिहा अहदुन, यानी कोई भी बंदा इसके अंदर तो जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा और इससे बच के ही रहेगा। लेकिन फिर क्या किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वहफ़ाहा बिश्शहवात, उस आग को शहवात से यानी कि डिज़ायर से, प्लेजर से घेर दिया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और अब जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब तो मुझे यार अब डर है, ला यबकी अहदुनिल्ला दखला, कि हर बंदा इसी आग में जाने वाला है, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तज्जिया था। बात ये का मतलब यही हुआ कि जन्नत में पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो तकालीफ या मुश्किलें हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, और जहन्नम क्योंकि इतनी इजी है तो कि दुनियावी ऐश और इशरत और उसके बदले इजीली मिल जाती है, तो इसीलिए फरमाया कि आग को शहवात से ढक दिया गया, यानी कि दे असल जो आग होगी जहन्नम की, उसे दुनिया के अंदर बहुत ही शहवात यानी कि डिज़ायर्स और पैशन और अपनी डिमांड्स जो हमारी हैं, और कंफर्ट और प्लेजर, उस चीज़ों में से हमें जहन्नुम की आग तक पहुंचता है इंसान, और जो दुनिया में तकलीफ़ें परेशानियां या अल्लाह के रास्ते में डिसकंफर्ट के थ्रू प्रोसेस से गुजरता रहता है, दरअसल आग असल में जन्नत में वही बंदा जा इजीली जाता है। तो इंसान को यही चाहिए कि कोशिश करता रहे कि किसी न किसी तरह से अल्लाह की अहकाम की पैरवी की जाए, क्योंकि गौर करने की बात यह है कि अबू जहल हो या अबू लहाब जैसे जो बदतरीन काफिर भी थे, वो उसी खाने काबा की का तवाफ़ करते थे जिसे हम बैतुल्ला कहते हैं, और ज़ाहिर है उमर रज़ी अल्लाह अनु हो या अबू बकर हो, वो भी उसी काबे का तवाफ़ करते थे। तो क्या फ़र्क था दोनों में? फ़र्क दोनों में डिफरेंस ये था, दोनों अरब थे, दोनों कैटेगरी सब उसी शहर के रहने वाले, उसी जगह पले बढ़ने वाले, उन्हीं कबीलों के लोग, उन्हीं कल्चर के बैकग्राउंड के लोग, लेकिन अबू जहल को ये या अबू लहाब को ये बात पता थी कि अगर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली तो द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ मुझे उनकी इत्तबा करनी पड़ेगी, यानी अपनी वो कम्फर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए वो तैयार नहीं थे, और उस कंफर्ट जोन को बचाने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वही उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ने की जो शहवात थी दुनिया की, इसे छोड़कर और मकारा में रही, दुनिया की परेशानियों में और मुश्किलों में और इसमें पड़ गए, और इन्हें चूज़ किया तो अल्लाह ने उन्हें आखरत की इटर्नल बेनिफिट से बशारत सुना दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये जिस तमाम सहाबा के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। और जाहिर है यही तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत से भी पता चलता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिसमें फरमाया मा रई तो मिसल नारी नामा हारिबुआ वला मिसल जन्नति नामा तालिबुआ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि दोजक की तरह कोई खौफनाक बला ऐसी नहीं है जिससे कोई शख्स सोता हो और भागने वाला हो, और मैंने नहीं देखी जन्नत की तरह की कोई, यानी कि एस्थेटिक चीज़, मरगूब और महबूब चीज़ के सोता हुआ उसको चाहने वाला हो। लेकिन यानी कि बंदा जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि गफलत में पड़ा हुआ है, असल मसला यही होगा, तो वो कभी भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, और चंद सिर्फ चंद थोड़ी देर के लिए या एक टेम्प्रेरी से फ़ायदे या बेनिफिट या प्लेजर के लिए अपनी इटर्नल जो ज़िंदगी है उसको ख़राब कर बैठता है। तो हमें अल्लाह से दुआ ही करनी चाहिए कि हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, और इन जो सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें आखिरत की उन्हें उनसे बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और हमारे साथ दुनिया और आखिरत दोनों में ही खैर और आफ़ियत का मामला फरमाए। रब्बना आतिना फ़िल दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरत हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। आज के लिए इतना ही। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।